इस गहरी चर्चा यानी हमारे इस नए गहन अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो पहली नजर में शायद किसी को बस एक प्राचीन धार्मिक उपदेश लगे।
हाँ बिल्कुल, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं,
है ना। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं, तो वो ये इंसानी मनोविज्ञान, सामाजिक दबाव और मतलब कृतज्ञता की एक बेहतरीन मास्टर क्लास साबित होता है।
सच में ये काफी चौंकाने वाला है।
तो आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो डॉक्टर डेविड ए डी सिल्वा का एक बहुत ही शानदार शोध है। ये शोध इब्रानियों की किताब के अध्याय 5 और 6 पर केंद्रित है।
विशेष रूप से अगर हम देखें तो 5:11 से 6:20 तक का जो हिस्सा है।
हाँ बिल्कुल वही। और आज हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक 2000 साल पुराना ग्रंथ लोगों को प्रेरित करने के लिए शर्म, डर और प्रोत्साहन के एक अनोखे मिश्रण का इस्तेमाल करता है।
और ये भी कि आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में ये रणनीति क्या मायने रखती है।
तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं हमेशा से सोचती रही हूँ कि इस प्राचीन ग्रंथ की शुरुआत में ऐसा क्या होता है जो श्रोताओं को एकदम से चौंका देता है।
यहाँ जो घटना घट रही है ना, उसे हम आज की भाषा में एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक रुकावट कह सकते हैं, मतलब एक स्ट्रेटेजिक पॉज।
अच्छा, वो कैसे?
कल्पना कीजिए कि कोई उपदेशक अपने श्रोताओं को यीशु के महायाजक होने के बारे में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विषय समझा रहा है। पूरा माहौल बहुत गंभीर है,
सब ध्यान से सुन रहे होंगे,
लेकिन अचानक वो अपनी बात को बीच में ही रोक देता है, मतलब एकदम से ब्रेक लगा देता है। वो महसूस करता है कि उसके सामने बैठे लोग उसकी बात को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान भटक रहा है।
अरे तो फिर वो क्या करता है?
ऐसे में विषय को आगे बढ़ाने के बजाय वो सीधे अपने श्रोताओं पर एक मनोवैज्ञानिक हमला करता है ताकि वे नींद से जागें।
हाँ, मैंने शोध में पढ़ा था कि वो उन्हें सुनने में सुस्त कहता है, मतलब वो श्रोताओं को ताना मारते हुए कहता है कि इतने लंबे समय से तुम लोग इस मार्ग पर हो, अब तक तो तुम्हें दूसरों का शिक्षक बन जाना चाहिए था।
बिल्कुल। और वो आगे कहता है कि तुम्हारी हालत ये है कि तुम्हें फिर से बुनियादी बातों पर वापस जाना पड़ रहा है।
ओए होए, ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात है। वो एक बहुत ही चुभने वाली बात कहता है कि तुम्हें अभी ठोस आहार के बजाय बच्चों की तरह दूध की जरूरत है।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा तमाचा था उनके अहंकार पर।
अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो क्या ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति कॉलेज के अंतिम वर्ष में हो, लेकिन प्रोफेसर अचानक पूरी क्लास के सामने उससे कहे कि तुम्हें तो फिर से नर्सरी में जाके ABCD सीखनी पड़ेगी क्योंकि तुम पढ़ना ही भूल गए हो।
हाँ, ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है।
मतलब ये तो किसी की भी गरिमा को गहरी ठेस पहुंचाने वाली बात है ना।
यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि प्राचीन काल में शर्मिंदगी का इस्तेमाल किसी को केवल नीचा दिखाने के लिए नहीं किया जाता था।
अच्छा, तो उसका क्या उद्देश्य होता था?
उस समाज में शर्म एक बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक उपकरण था। इसका उद्देश्य लोगों को सही रास्ते पर लाना और उन्हें परिपक्व बनाना था।
ये सोचने का एक अलग ही नजरिया है।
इसे समझने के लिए हमें उस दौर के अन्य महान विचारकों को देखना होगा। उदाहरण के लिए, ग्रीको रोमन दुनिया में स्टोइक दर्शन के बहुत बड़े गुरु हुए हैं एपिक्टेटस।
हाँ, एपिक्टेटस का नाम तो सुना है।
वो खुद एक पूर्व गुलाम थे जो बाद में एक महान दार्शनिक बने। उनके पास रोम के बड़े बड़े अमीर लोग और युवा सीखने आते थे।
तो क्या एपिक्टेटस भी अपने शिष्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे? मतलब मैंने हमेशा स्टोइक दार्शनिकों को बहुत ही शांत और संयमित रूप में कल्पना की है।
उनका दर्शन शांत रहने का जरूर था, लेकिन पढ़ाने का तरीका बहुत तीखा हो सकता था। एपिक्टेटस अक्सर अपने शिष्यों को ताना मारते थे कि वे कब तक बच्चों की तरह व्यवहार करते रहेंगे।
सच में? भरी क्लास में?
हाँ, वे भरी क्लास में पूछते थे कि तुमने बड़े बड़े दार्शनिक सिद्धांत तो रट लिए हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में कब उतारोगे? क्या तुम किसी और मसीहा या शिक्षक का इंतजार कर रहे हो?
बाप रे, ये तो बहुत सीधा हमला है।
और इब्रानियों का ये उपदेशक भी बिल्कुल उसी स्तोइक परंपरा का पालन कर रहा है। वो जानबूझकर श्रोताओं को शर्मिंदा कर रहा है ताकि उनके अहंकार को ठेस पहुंचे,
ताकि वो अपनी वो आध्यात्मिक सुस्ती छोड़ दे।
बिल्कुल, उसका लक्ष्य सिर्फ उन्हें ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसा इंसान बनाना है जो सही और गलत में फर्क कर सके।
ये एक बहुत ही जोरदार शुरुआत है। श्रोताओं को उनके बचपने के लिए इस तरह डांटने के बाद कोई भी उम्मीद करेगा कि अब गुरुजी वापस अपने मुख्य विषय पर आ जाएंगे।
हाँ, कि चलो आप शांति से अपना उपदेश पूरा करें।
लेकिन डॉक्टर डी सिल्वा का शोध दिखाता है कि चर्चा यहाँ से एक बहुत ही गंभीर और सच कहूँ तो एक डरावने मोड़ पर चली जाती है।
हाँ, ये सब काफी विवादित भी रहा है।
इब्रानियों 6 के शुरुआती हिस्से में रास्ता भटकने के बहुत ही भयंकर परिणामों की बात की गई है, मतलब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
इस हिस्से ने सदियों से विद्वानों को बेचैन किया है। उपदेशक एक बेहद कठोर चेतावनी देता है। वो कहता है कि जिन लोगों ने एक बार स्वर्गीय उपहार का स्वाद चख लिया है,
जिन्होंने पवित्र आत्मा का अनुभव कर लिया है,
हाँ, अगर इसके बाद रास्ता भटक जाते हैं या अपने विश्वास से मुकर जाते हैं तो उन्हें वापस लाना असंभव है।
ओह, असंभव।
हाँ, वो इस कृत्य को मसीहों को फिर से सूली पर चढ़ाने और उनका सरेआम अपमान करने के बराबर बताता है।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर हम धर्म की सामान्य समझ को देखें तो हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि ईश्वर दयालु है।
बिल्कुल, कि वो माफ कर देता है।
हाँ, कि वो हमेशा दूसरा मौका देता है। फिर यहाँ इतनी कठोर और डरावनी भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है कि उन्हें वापस लाना असंभव है? क्या ये किसी धार्मिक नियम को तोड़ने का मामला है?
इस सवाल का जवाब आज के धार्मिक चश्मे से नहीं मिलेगा। इसे समझने के लिए हमें पहली सदी के भूमध्य सागरीय समाज की नब्ज को पकड़ना होगा।
अच्छा, तो ये कुछ सांस्कृतिक बात है।
बिल्कुल, वो समाज आधुनिक मोक्ष या पाप पुण्य की बहसों पर नहीं चलता था। वो समाज पूरी तरह से संरक्षक और ग्राहक की व्यवस्था पर आधारित था।
पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप।
हाँ, जैसे अंग्रेजी में पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप कहा जाता है।
अच्छा, तो ये एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी।
मतलब ये उस समय की पूरी जीवन शैली थी। उस जमाने में आज की तरह कोई बैंक या बीमा कंपनियां तो होती नहीं थी।
हाँ, ना ही कोई सरकारी योजनाएं।
तो अगर आप एक आम इंसान हैं तो आपको समाज में टिके रहने के लिए किसी ताकतवर रसूखदार इंसान की जरूरत पड़ती थी, और वही व्यक्ति आपका संरक्षक होता था।
समझ रही हूँ।
वो आपको कानूनी सुरक्षा देता था, आर्थिक मदद करता था। बदले में आप यानी ग्राहक उस संरक्षक के प्रति पूरी तरह से वफादार रहने की कसम खाते थे। आपका काम था समाज में अपने संरक्षक के नाम का गुणगान करना।
तो अगर हम इसे आधुनिक दुनिया के एक उदाहरण से जोड़ें, मान लीजिए किसी युवा उद्यमी ने एक बहुत बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट से अपने नए स्टार्टअप के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग ली।
हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये।
उस निवेशक ने उस पर पूरा भरोसा किया, लेकिन जैसे ही कंपनी थोड़ी चली, उस उद्यमी ने न सिर्फ वो सारा पैसा बर्बाद कर दिया बल्कि सरेआम मीडिया के सामने उसी निवेशक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।
बिल्कुल, ये वैसा ही है।
उसने दुनिया को ये दिखाया कि उस निवेशक के पैसे और भरोसे की कोई कीमत नहीं। क्या ये वैसी ही स्थिति है?
ये तुलना स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। प्राचीन समाज में संरक्षक को धोखा देना या उसके एहसान को भूल जाना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था।
बाप रे।
उस समय के एक बहुत मशहूर ग्रीक वक्ता थे डियोक्रेसोस्टोम। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर काफी कुछ लिखा है।
उन्होंने क्या कहा है इस बारे में?
उनके अनुसार जो व्यक्ति एहसान फरामोश होता है उसे समाज में एक अपराधी से भी बदतर माना जाता है। डियोक्रेसोस्टोम स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी व्यापारी ऐसे बेईमान ग्राहक के साथ दूसरी बार व्यापार करने का जोखिम नहीं उठाता।
मतलब समाज उसे पूरी तरह से बहिष्कृत कर देता है, उसका तो हुक्का पानी ही बंद हो जाता है।
एकदम सही। और इब्रानियों का लेखक इसी सांस्कृतिक मानसिकता का पूरा फायदा उठा रहा है। वो अपने श्रोताओं से कह रहा है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संरक्षक ईश्वर है,
जिसने सबसे बड़ा उपहार दिया है।
हाँ, अब अगर तुम बाहरी दुनिया के दबाव या डर के कारण इस एहसान को भूल जाते हो और ईश्वर को पीठ दिखाते हो तो तुम सरेआम अपने संरक्षक का अपमान कर रहे हो।
ओ, तुम पड़ोसियों को ये दिखा रहे हो कि ईश्वर के उपहारों की कोई कीमत नहीं है।
बिल्कुल। उस प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के नजरिए से सोचें तो क्या कोई भी संरक्षक ऐसे एहसान फरामोश व्यक्ति को दूसरा मौका देगा? उस समाज का सीधा जवाब था, कभी नहीं।
ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब ये केवल एक आध्यात्मिक गलती नहीं है, ये तो ब्रह्मांडीय स्तर का एक सामाजिक विश्वासघात है।
हाँ, बहुत बड़ा विश्वासघात।
और शायद इस विश्वासघात की गंभीरता को उस समय के हर आम इंसान के दिल तक पहुंचाने के लिए ही उपदेशक इसके तुरंत बाद एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता था जिसे हर कोई समझता था।
आप खेती और किसानी वाले उदाहरण की बात कर रही हैं।
हाँ, प्राचीन दुनिया में हर कोई सीधे तौर पर खेती से जुड़ा था या उस पर निर्भर था। इब्रानियों 6 में वो मिट्टी और बारिश का उदाहरण देता है ना।
हाँ, उपदेशक कहता है कि जो मिट्टी बारिश पीकर अच्छी फसल देती है, जो उन लोगों के लिए उपयोगी पौधे उगाती हैं जो उस पर मेहनत करते हैं, वह ईश्वर का आशीर्वाद पाती है।
ये तो एक अच्छी मिट्टी की बात हो गई।
लेकिन जो मिट्टी इतना पानी और पोषण मिलने के बावजूद केवल कांटे और ऊंट कटारे उगाती है, वो बेकार है, वो शापित है, और उसका अंत यह है कि उसे जला दिया जाएगा।
कांटे और ऊंट कटारे। जैसे ही ये शब्द आता है, दिमाग तुरंत उत्पत्ति की किताब के उस आदम श्राप की तरफ जाता है।
हाँ, जेनेसिस 3।
बिल्कुल, जहां आदम और हव्वा के पतन के बाद धरती को शाप दिया गया था कि वो अब कांटे उगाएगी। ये बहुत गहरा प्रतीक है।
और ये सिर्फ एक यहूदी संदर्भ नहीं था, रोमन दुनिया के सबसे रईस दार्शनिकों में से एक थे सेनेका। सेनेका ने ऑन बेनिफिट्स नाम की एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी थी।
उसमें उन्होंने क्या तर्क दिया था?
उसमें वे समझाते हैं कि कोई भी समझदार किसान रेत में या बंजर जमीन में बीज नहीं बोता। किसान उसी मिट्टी में अपना पसीना बहाता है जहाँ से उसे एक अच्छी फसल मिलने की उम्मीद होती है।
हाँ, जहाँ मेहनत का कोई फल मिले।
इसी तरह यशाह नबी की किताब में अंगूर के बाग का एक बहुत मशहूर गीत है। वहाँ भी ईश्वर एक किसान की तरह बहुत मेहनत से एक बाग लगाता है, लेकिन वो बाग अच्छे अंगूरों की जगह सड़े हुए जंगली अंगूर पैदा करता है।
तो असल में हो ये रहा है कि ईश्वर यहाँ एक ऐसी निवेशक या किसान के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जो इंसान रूपी मिट्टी में लगातार अपना समय और अनुग्रह निवेश कर रहे हैं।
ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है।
हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि ईश्वर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। मतलब क्या ईश्वर को बदले में हमसे कुछ भौतिक चीज चाहिए?
सेनेका और प्राचीन यहूदी विचारक दोनों इस बात पर सहमत थे कि ईश्वर या एक सच्चे महान संरक्षक को अपने लिए किसी वापसी की जरूरत नहीं होती।
तो फिर उन्हें क्या चाहिए?
ईश्वर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है कि इंसान उस अनुग्रह को ग्रहण करे और उसे अपने आसपास के लोगों, अपने समुदाय के भले के लिए इस्तेमाल करे।
ओहो, मतलब जो हमें मिला है वो दूसरों तक पहुँचे।
बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति को भरपूर ईश्वरीय उपहार मिल रहे हैं लेकिन उसका व्यवहार अपने समुदाय के प्रति कड़वाहट, स्वार्थ और कांटों से भरा है, तो उस निवेश का कोई फायदा नहीं हुआ।
उस मिट्टी का अंत जलाए जाने में ही है, क्योंकि वो किसी के काम नहीं आ रहे।
एकदम सही।
अब जरा उस कमरे के माहौल की कल्पना कीजिए, जो लोग ये उपदेश सुन रहे होंगे उनकी क्या हालत हो रही होगी।
डर के मारे पसीने छूट रहे होंगे उनके।
हाँ, पहले उन्हें सुस्त कहकर उनका मजाक उड़ाया गया, फिर उन्हें बताया गया कि अगर वे भटके तो वापस आना असंभव है, और अब उन्हें ये भयानक तस्वीर दिखाई जा रही है कि वो एक जली हुई शापित मिट्टी बन सकते हैं।
कोई भी इंसान यहाँ तक आते आते पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगेगा
या शायद गुस्से में आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर डी सिल्वा बताते हैं कि ठीक इसी बिंदु पर बातचीत का रुख पूरी तरह से, मतलब 180 डिग्री बदल जाता है। ये एक भयंकर बयानबाजी का चक्रव्यूह या एक तरह का रिटोरिकल व्हिप्लैश।
हाँ, प्राचीन बयानबाजी की ये सबसे शानदार तकनीकों में से एक है। इब्रानियों 6 के 9वें पद में उपदेशक का स्वर अचानक से बिल्कुल नरम, लगभग एक प्यार करने वाले पिता जैसा हो जाता है।
एकदम से वो क्या कहता है?
वो कहता है, प्यारे दोस्तों, हालांकि हम ऐसी कठोर बातें कर रहे हैं लेकिन हमें तुम्हारे बारे में बहुत बेहतर चीजों की उम्मीद है।
अरे वाह, अचानक से इतनी मिठास।
हाँ, इसके बाद वो तुरंत उन श्रोताओं की तारीफ करने लगता है कि उन्होंने अतीत में कैसे संतों की सेवा की है और ईश्वर उनके उस अच्छे काम को कभी नहीं भूलेगा।
ये तो सच में किसी को एक भयंकर भावनात्मक झूले पर बिठाने जैसा है। डराने के तुरंत बाद इतनी भारी तारीफ,
सुनने में अजीब लगता है ना?
हाँ, ये तरीका मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब क्या ये श्रोताओं के साथ हेरफेर करने जैसा नहीं है, एक तरह का मैनिपुलेशन?
अगर हम इसे व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो ये एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। प्राचीन रोम में अगर किसी को एक बेहतरीन वक्ता या नेता बनना होता था तो वो सार्वजनिक भाषण कला पर किताबें पढ़ते थे।
अच्छा, कोई खास किताब थी क्या इसके लिए?
ऐसी ही पहली सदी की एक बहुत मशहूर किताब है, रेटोरिका एड हिरेनियम। ये वक्ताओं के लिए एक तरह का मास्टर क्लास मैनुअल था। इसमें भाषण देने वालों को बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
उसमें इस तरह के भावनात्मक उतार चढ़ाव के बारे में क्या कहा गया है, मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है।
उसमें ये सलाह दी गई है कि अगर आपको अपने श्रोताओं को कोई बहुत कड़वी सच्चाई बतानी है या बहुत कठोर शब्दों में चेतावनी देनी है तो उसके तुरंत बाद आपको उनकी तारीफ भी करनी चाहिए।
इसके पीछे का तर्क क्या था?
कारण बहुत सीधा है। बहुत ज्यादा डर या लगातार डांट इंसान को या तो पूरी तरह से निराश कर देती है या फिर उसे बागी बना देती है। श्रोता सोच सकता है कि अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो फिर कोशिश ही क्यों करूं। डर और आत्मविश्वास के बीच इसी रणनीति के तहत झूलता है।
मतलब डर उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है।
हाँ, और तारीफ उनके आत्मविश्वास को वापस लाती है, उन्हें याद दिलाती है कि वे अतीत में अच्छे थे और आगे भी समुदाय के प्रति वफादार रह सकते हैं।
ये तो सच में इंसानी दिमाग को हैक करने जैसा है। एक तरफ वो उन्हें खौफ से भर रहा है और दूसरी तरफ वो उनके कंधों पर हाथ रखकर कह रहा है, मुझे पता है तुम कर सकते हो।
बिल्कुल।
लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक संशय पैदा होता है। अगर ये आध्यात्मिक यात्रा इतनी ही मुश्किल है, जिसमें सुस्त पड़ने का खतरा हर कदम पर है, संरक्षक को धोखा देने का सामाजिक खौफ है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कोई भी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा?
यही वो बिंदु है जहां चर्चा एक प्राचीन वादे और एक लंगर की ओर मुड़ जाती है।
हाँ, श्रोत सामग्री में भी इसका जिक्र है।
उपदेशक श्रोताओं के इस डर को बहुत अच्छी तरह समझता है, इसलिए वो उन्हें एक अंतिम और सबसे मजबूत गारंटी देता है। वो उत्पत्ति की किताब के 22वें अध्याय का जिक्र करता है,
जहाँ ईश्वर ने अब्राहम को एक वादा किया था।
हाँ, और सबसे अनोखी बात ये थी कि ईश्वर ने वो वादा खुद अपनी ही कसम खाकर किया था।
ओह, ये बात मुझे हमेशा से हैरान करती है। मतलब ईश्वर को कसम खाने की क्या जरूरत पड़ गई? इंसान कसम खाता है क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है, उसका कल का भरोसा नहीं है।
सही बात है।
लेकिन ईश्वर तो खुद ही सत्य है, फिर ये कसम का क्या मतलब हुआ?
ये एक बहुत ही गहरा और वाजिब सवाल है। मजे की बात यह है कि प्राचीन काल में भी विचारकों ने सवाल उठाया था। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में रहने वाले एक बहुत बड़े यहूदी दार्शनिक थे, फिलो।
फिलो?
उन्होंने इस पर क्या कहा?
फिलो का तर्क था कि शपथ या कसम आमतौर पर अनिश्चित चीजों को पक्का करने के लिए ली जाती है। चूंकि ईश्वर की हर बात वैसे ही परम सत्य है, इसलिए उनके लिए कसम खाना तकनीकी रूप से बेमानी है। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया?
ईश्वर ने कसम अपने लिए नहीं खाई, बल्कि इसलिए खाई ताकि हम इंसानों के लिए उन पर विश्वास करना आसान हो जाए। ये ईश्वर का एक तरीका था इंसानों के मन के प्राकृतिक डर, शक और अनिश्चितता को पूरी तरह से शांत करने का।
अच्छा, मतलब ईश्वर हमारी मानवीय कमजोरियों को समझ कर हमारे स्तर पर आकर बात कर रहे थे।
बिल्कुल, और यही वो अटल उम्मीद है जिसे उपदेशक हमारी आत्मा के लिए एक लंगर कहता है।
एंकर। आज के समय में शायद हम लंगर या एंकर शब्द को उतनी गंभीरता से न लें।
हाँ, आज तो इसका मतलब ही बदल गया है।
लेकिन प्राचीन काल में जब लोग लकड़ी के जहाजों में समुद्र की भयंकर यात्राएं करते थे, तो एक तूफान में लंगर ही उनके जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क होता था।
और यहाँ उस लंगर की विशेषता ये है कि वो समुद्र के नीचे किसी रेत या चट्टान में नहीं गड़ा है।
तो वो कहाँ गड़ा है?
उपदेशक कहता है कि ये लंगर सीधे उस अटल स्वर्गीय स्थान में मंदिर के पर्दे के पीछे गड़ा हुआ है, जहाँ यीशु एक अग्रदूत या स्काउट के रूप में पहले ही जा चुके हैं।
स्काउट की तरह?
हाँ, प्राचीन सेनाओं में एक स्काउट का काम होता था, सबसे आगे जाकर खतरनाक रास्तों को खोजना और पीछे आने वाली सेना के लिए रास्ता सुरक्षित करना। यीशु आगे जा चुके हैं और वो लंगर वहाँ मजबूती से फंसा हुआ है,
जिसे कोई दुनियावी तूफान हिला नहीं सकता। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है?
आप किस संदर्भ में पूछ रही हैं?
मतलब ये सारी बातें, ये शर्म, ये पैटर्न क्लाइंट व्यवस्था, ये खेती का उदाहरण और ये आत्मा का लंगर, आज के इस आधुनिक तेज रफ्तार वाली जिंदगी जीने वाले इंसान के लिए क्यों मायने रखता है? डॉक्टर डी सिल्वा के शोध से हमें अंततः क्या सीख मिलती है?
इसका सबसे बड़ा और गहरा अर्थ ये है कि हमारी कोई भी आध्यात्मिक या वैचारिक यात्रा सिर्फ जानकारी जुटाने के बारे में नहीं है। आज के समय में हम धर्म, दर्शन, विज्ञान के बारे में अनगिनत जानकारी अपने फोन पर एक क्लिक में इकट्ठा कर लेते हैं।
हाँ, हम तथ्यों को रट लेते हैं,
ना बदले।
यानी जो बीज बोया गया है उसे फसल देनी होगी, हमें जो मिला है उसे जीना होगा।
बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ईश्वर या प्रकृति ने हमें जो उपहार दिए हैं, उन्हें वापस लौटाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने समुदाय में निवेश करें।
विशेष रूप से उन लोगों की मदद करें जो मुसीबत में है, जो हाशिए पर है।
हाँ, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा है, ईश्वर का दिया हुआ अनुग्रह हम तक आकर एक तालाब की तरह रुक नहीं जाना चाहिए,
बल्कि वो एक नदी की तरह हमारे जरिए दूसरों तक बहना चाहिए। यही असल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है।
बिल्कुल सही कहा आपने।
और अगर हम उस लंगर वाले हिस्से को देखें, तो मुझे लगता है कि ये आज की दुनिया के लिए सबसे जरूरी संदेश है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार हर सेकंड बदल रही है।
हाँ, कुछ भी स्थिर नहीं है।
बाजार बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, सामाजिक मान्यताएं बदल रही हैं। अगर हम अपनी स्थिरता, अपनी आत्मा का लंगर इस बदलती दुनिया की स्वीकृति या सोशल मीडिया के लाइक्स में खोजने की कोशिश करेंगे, तो हम हमेशा लहरों में भटकते रहेंगे
और खौफ में जिएंगे।
बिल्कुल। हमारी स्थिरता उस अटल वादे में होनी चाहिए जो समय और परिस्थितियों के मोहताज नहीं है।
ये इस पूरे पाठ का सबसे खूबसूरत और मजबूत सार है। ज्ञान को कर्म में बदलना, समुदाय की सेवा करना और अपनी उम्मीद को एक ऐसी जगह बांधना जो कभी नहीं हिलती। ये एक ऐसा प्राचीन फॉर्मूला है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
तो ये सच में एक अद्भुत और आंखें खोल देने वाला सफर रहा है। हमने देखा कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ श्रोताओं को उनकी आध्यात्मिक सुस्ती पर ताना मारने से शुरू होता है।
एक स्ट्रेटेजिक पॉज के साथ।
फिर वो उन्हें एक शक्तिशाली संरक्षक के क्रोध का डर दिखाता है, एक मेहनत करने वाले किसान का उदाहरण देकर उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराता है, और अंत में उन्हें एक अटल वादे के लंगर से बांधकर एक गहरी शांति देता है।
ये सिर्फ एक उपदेश नहीं, बल्कि इंसानों को अंदर से झकझोर कर उन्हें परिपक्व बनाने की कला है।
और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार है जो आज के स्रोत सामग्री से थोड़ा आगे जाता है, लेकिन आज के हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। इस पर हम सबको सोचना चाहिए।
बिल्कुल, श्रोताओं को ये जरूर सोचना चाहिए।
आज की दुनिया में जहां हम हर सेकंड नई जानकारी निकल रहे हैं, लगातार स्क्रीन पर रील स्वाइप कर रहे हैं, सैकड़ों न्यूज हेडलाइंस पढ़ रहे हैं, दर्जनों पॉडकास्ट सुन रहे हैं, क्या हमारे ये लगातार सूचनाएं खाने की आदत ही आधुनिक दौर की सुनने में सुस्ती है?
बहुत गहरा सवाल है।
क्या हम ये मान बैठे हैं कि सिर्फ बहुत सारी जानकारी दिमाग में भर लेने से और दुनिया भर के मुद्दों पर बहस कर लेने से हम परिपक्व हो गए हैं? क्या हम ठोस आहार को सच में चबाकर उसे पचाकर अपने जीवन, अपने व्यवहार और अपने समुदाय में उतार रहे हैं,
या फिर बस दूध पी रहे हैं?
हाँ, या फिर हम बस बिना सोचे समझे सूचनाओं का मीठा दूध पी रहे हैं और खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझकर खुश हो रहे हैं? क्या हम सच में एक अच्छी फसल पैदा कर रहे हैं या सिर्फ सूचनाओं के कांटे उगा रहे हैं? ये सच में एक बहुत गहरी सोचने वाली बात है जिसे आज हमें खुद से पूछना चाहिए।
बिल्कुल, ये आत्ममंथन का समय।
इस गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने और अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए विषय और नए नजरिए के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।